प्रस्तुति। भारतीय ज्ञानपीठ ने सदा प्रयत्न किया है कि पुरस्कार समर्पण समारोह के अवसर पर पुरस्कृत कृति का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया जाए, या यदि कृति हिंदी की है तो पुरस्कृत साहित्यकार के रचना संसार की एक झांकी प्रस्तुत करने के लिए उसकी कृतियों से सृजेता द्वारा स्वयं चुनी गई रचनाओं का संकलन प्रकाशित किया जाए। बांसुरी, शंकर कुरूप, गण देवता, ताराशंकर बंदोपाध्याय, श्री रामायण दर्शनम, अंशतः के पी पुट्टा एवं निशीत उमाशंकर जोशी, चिदंबरा संचयन, विविध भारतीय भाषाओं में अनुवादित पंत, बज्मे जिंदगी, रंगे शायरी, फिराक, स्मृति सत्ता भविष्यत तथा अन्य कविताएं, विष्णुदेव, ये सब कृतियां समारोह आयोजन के अंग बनकर प्रकाशित हुई हैं। निसंदेह हिंदी साहित्य इन प्रकाशनों से समृद्ध हुआ है और भारतीय ज्ञानपीठ ने इनके माध्यम से एक महत्वपूर्ण आनुषंगिक उपलब्धि पाई है। 1 दिसंबर 1973 को आयोजित पुरस्कार समारोह के लिए जब पुरस्कृत कृत उर्वशी के रचयिता दिनकर जी के कृतित्व के प्रकाशन का प्रश्न आया तो हमने दिनकर जी से अनुरोध किया कि इस अवसर के लिए वह एक ऐसा काव्य संकलन तैयार कर दें जो उनके सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व करता हो और इस रूप में इसका चुनाव मात्र उन्हीं के द्वारा हुआ हो। दिनकर जी ने हमारे अनुरोध को मान दिया और अब यह संचयिता इस रूप में आपके हाथों में है। इस संकलन का प्रकाशनोत्सव भी पुरस्कार समारोह के मंच से हुआ है। अतः यह कृति अपने आप में दिनकर जी के जीवन और कृतित्व के इतिहास की अविस्मरणीय कड़ी बन गई है। अब तक प्रकाशित लगभग 30 काव्य कृतियों, संकलनों आदि में से तो श्रेष्ठतम चुनना कठिन है किसी के लिए भी, स्वयं कवि के लिए तो असंभव ही है, क्योंकि प्रत्येक रचना उसकी आत्मचा है, जो किसी कहे कि वह वर्णनीय नहीं। दिनकर जी के लिए समस्या कितनी भी कठिन क्यों न रही हो, हमें इसे श्रेष्ठतम कहने में संकोच इसलिए नहीं कि चक्रवाल 1956, कविश्री 1957 और लोकप्रिय कवि दिनकर 1960 जैसे संकलन पहले प्रकाशित हो चुके हैं और दिनकर जी ने अपनी कविता के मान प्रतिमान निश्चित करने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाशकीय सहयोग दिया होगा। संचयिता कृति की विशेषता यह है कि यह न केवल पिछले 1 दशक की कविताओं की श्रेष्ठता को समाहित कर रही है, प्रत्युत श्रेष्ठों के संकलन में से श्रेष्ठतर का यह संकलन है। दिनकर का काव्य विस्तार की दृष्टि से, काल अवधि को परिमापित करने की दृष्टि से, भाषागत विषयगत प्रयोगों की दृष्टि से, गुणगत और प्राकृतिकगत विविधता की दृष्टि से तथा सर्वोपरि साहित्यिक प्रभाव की दृष्टि से अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं, महत् हैं। पुरस्कार समारोह में समर्पित प्रशस्ति का साक्ष्य इस प्रकार है। इन्वर्टेड कॉमा, श्री दिनकर ने छायावाद की अस्पष्ट और वायवीय विषय वस्तु तथा रूप विधानों वाली काव्य परंपरा से अलग होकर आधुनिक हिंदी कविता को एक ऐसी ओजमयी ऋजु भाषा शैली दी जो पुनरुत्थानशील राष्ट्रीयता की अदम्य प्रेरणाओं को अभिव्यक्त करने में समर्थ हुई। वे हिंदी साहित्य में एक अपूर्व घटना तथ्य जैसे बनकर आए, क्योंकि जिस सशक्तता से उनकी लेखनी ललकार और विद्रोह का झंडा ऊंचा कर सकी, उसी से सुशांत चिंतन और गीतात्मक भाषा शैली में मानव मन के कोमल भावों को प्रकट करती आई। उनके काव्य में इन दोनों प्रवृत्तियों का बार बार बड़ा मुग्धकर पुनरावर्तन होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि अचूक आह्वान शक्ति और भावात्मक प्रकृति दोनों के स्वभाव के कारण उनके काव्य को दहकते अंगारों पर इंद्रधनुषों की क्रीड़ा में से उपमित किया गया है। पुरस्कार जयी काव्य नाटक उर्वशी फल सिद्धि है। कवि की प्रतिभा और एक चिंतक के प्रेम भाव के अर्थ, उद्देश्य और विस्तारों के अन्वेषण की, मानव के इंद्रिय जगत से होते चरम परम की शोध की, 30 काव्य कृतियों और साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत संस्कृति के 4 अध्याय सहित निबंध, कहानी, संस्मरण, दैनिकी, समीक्षा इतिहास आदि विभिन्न साहित्य विधाओं की 25 प्रांजल गद्य कृतियों के प्रतिभ प्रणेता दिनकर जी इस प्रकार दर्शन और विश्व काव्य की गहराइयों में बैठते हुए साहित्यिक उपलब्धि के उत्तरोत्तर भव्य शिखर तक पहुंचने की अविराम आशाएं बधाए हुए हैं। इनोटेड कामाबंद, दिनकर की कविता का विकास आदि से अंत तक द्वंद्वों से जूझने की कथा है। द्वंद्व जो प्रबुद्ध चेता कवि को चिंतन और भावना के क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर घेरते हैं, भरमाते हैं, विकल करते हैं और चुनौती देकर उसे साधना एवं समाधान के लिए प्रगति पथ पर ले चलते हैं। छायावाद भी अभिजात शैली और रहस्यात्मक कथ्य से द्वंद्व, रेणुका 1935 के सहज रचना शिल्प और जन सुपूत सामसामायिक कथ्य का हुंकार 1938 की क्रांतिकारी आह्वान से द्वंद्व कुरुक्षेत्र 1946 का और स्वयं कुरुक्षेत्र है एक सर्वाधिक समर्थ अभिव्यक्ति उस द्वंद्व की जो युद्ध और शांति हिंसा और अहिंसा प्रवृत्ति और निवृत्ति की जीवन पद्धति तथा विज्ञान और आत्मज्ञान की परिणति से निहित है। बीच में द्वंद्व गीत 1940 तो अभिधा में ही स्पष्ट है। रश्मि रथी 1952 के प्रतिपक्ष में आ खड़ी होती है। उर्वशी 1961 उर्वशी जो अप्सरा और लक्ष्मी द्विधाग्रस्त मानव और द्विधा मुक्त देवता एवं काम और आध्यात्मिक द्वंद्वों की गाथा है। रहट के घाटों की माला के उतार चढ़ाव के भांति चक्रनेमी क्रमीण उर्वशी की प्रतिगामी दिशा के प्रभावकारी मुद्रा परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में परिलक्षित है। कड़ी कड़ी मिलकर जब द्वंद्वों की श्रृंखला एक तरह से पूरी हो गई तो जैसे आगे चरण निक्षेप कठिन हो जाए या आगे की यात्रा के लिए शक्ति संचय का दशक जैसे जरूरी हो गया, अर्थात रश्मिरथि से उर्वशी तक आने में एक दशक लगा। बीच के व्यवधान को विश्रांति के कविताओं ने पाटा। दिल्ली और नीम के पत्ते 1954, सूरज का ब्याह और नीलकुसुम 1955 और नए सुभाषित 1957 ने परशुराम की प्रतीक्षा के बाद दिनकर की गीत 1973 तक का एक दशक और इसी प्रकार विश्रांति की कविताओं का काल है। कोयल और कविता, मृत्यु तिलक, दिनकर की सुक्तियां और आत्मा की आंखें सब 1964 से प्रकाशित। इन दो दशकों का तथाकथित तथा परिलक्षित विश्रांति काल दिनकर के लिए घोर आंतरिक संघर्षों का काल रहा है। संघर्ष जिसने दिनकर के बाहर के प्रसार को अंतर्मुखी किया, जिसने उन्हें नई उपलब्धियों से मंडित किया। विश्व कविता का अध्ययन और प्रभाव, नील कुसुम 1955, सीपी और संख 1957, काव्य की भूमिका 1958, शुद्ध कविता की खोज 1966, दार्शनिक ग्रंथों का मनन, इतिहास का अध्ययन, राष्ट्र की आत्मा को प्रभाषित करने का प्रयत्न, संस्कृति के चार अध्याय 1956, धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1959, इन अंतरालों में दिनकर के चिंतन की गरिमा गद्य के निखार में व्यक्त हुई। इन दो दशकों की विराम कथा में जो बात छूट गई वही शायद अब सबसे महत्वपूर्ण है। हारे को हरे नाम 1970, क्या आंतरिक संघर्ष से दिनकर को तोड़ दिया या नीचे की करदम और ऊपर के धूल से दबे उठकर त्वचा से छिटक कर जीने की साधना का यह प्रवेश द्वार है? शायद दोनों ही, क्योंकि द्वंद्व दिनकर के जीवन के श्वास प्रश्वास है। दिनकर के काव्य के उतार चढ़ाव के प्रत्येक चरण को उनके जीवन के विकास क्रम या कहें घटनाक्रम के साथ जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जाना चाहिए। जन्मभूमि सिमरिया, मुंगेर बिहार की बांसवन, प्राकृतिक सुषमा और साथ साथ गांव वालों के जीवन का विकराल दैन्य, अशिक्षा और मरण की देहरी पर नवजन्म की गीत, इतिहास में आनर्स करने के बाद का अकिंचन अध्यापक, फिर एक राष्ट्रधर्मी स्वाभिमानी सब स्टार जिसकी सेवा के प्रथम चार वर्षों में ब्रिटिश शासन ने उसे 22 बार ट्रांसफर किया कि हिमालय और हुंकार का यह कभी नौकरी छोड़ दे। देशी स्वतंत्रता के उपरांत पटना में 6 वर्ष तक सरकारी प्रचार विभाग का अधिकारी, फिर कॉलेज में हिंदी विभाग का अध्यक्ष प्राध्यापक, विश्वविद्यालय का कुलपति। बीच बीच में अपने पुत्रों के प्रकाशन गृह के लिए विश्रांति काल की इन कविताओं के योगदान की संभावना बनाते गए। दिनकर ने अपने कार्यकाल के 38 वर्षों में लगभग 19 वर्ष गाँव में और 19 वर्ष दिल्ली में बिताए हैं। संसद सदस्य के रूप में 12 वर्ष और हिंदी सलाहकार अधिकारी के रूप में 7 वर्ष। उनके अनुभवों की व्यापकता और गहनता के क्या कहने। संसद सदस्य की हैसियत से दिल्ली में रहने के गौरव ने नए द्वंद्वों को जन्म दिया। यहाँ रहकर भारत भाग्य विधाताओं के खोखले जीवन के अंतरंग झांकी, शासकीय दावपेच, उखाड़ पछाड़, जनता के प्रति हृदयहीन उपेक्षा भाव, करोड़ों के व्यय के आंकड़ों के जीवन के कंगाली के छाया चित्रों का उपहास और त्रास दिनकर ने अभिव्यक्त किया। मैं भारत के रेशमी नगर में रहता हूँ, जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती, मैं चांदनियों का बोझ किसी विधि सहता हूँ। गंदगी, गरीबी, मैलेपन को दूर रखो, शुद्धोधन के पहरे वाले चिल्लाते हैं, है कपिल वस्तु पर फूलों का श्रृंगार पड़ा, रूथ रथ समारूढ़ सिद्धार्थ घूमने जाते हैं। रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, तुम भी अभाव से कभी ग्रस्त हो रोए हो, बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में तुम भी क्या घर पर पेट बांध कर सोए हो। दिनकर धन्य है कि उन्होंने अपने जीवन में वह सब कुछ मिला जिसकी भाग्यवान लोग कामना किया करते हैं। यशस्वी कवि जिसे जनता ने प्यार किया, सचमुच उसकी कविता से साक्षात्कार करके उससे प्रभावित होकर पुरस्कार और पदक और पद और पद्म भूषण और प्रेम कौन कभी लिख सकता था। उर्वशी बिना प्रेम के अगोचर छोरों को छुए। मैं तुम्हारे प्राण का विधा हुआ खग, वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का नीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। सौभाग्य के मनसुजा रीति न रह जाए, इसीलिए दिनकर को विधाता ने वेदनाओं से मथा है। तरुण पुत्र की मृत्यु, गृह उच्छेद, विषणता, राग उद्वेग और घोर चिंता। हृदय छोटा हो तो शोक वहां नहीं समाएगा और दर्द दस्तक बिना दिए बिना लौट जाएगा। टीस उसे उठती है जिसका भाग्य खुलता है। वेदना गोद में उठाकर सबको निहाल नहीं करती, जिसका पुण्य प्रबल होता है वही अपने आंसुओं से धुलता है। कौन जानता है कामना पूर्ति की इति पर चरण रखकर दिनकर आगे बढ़ जाए और सिमरिया के संत से एकाकार हो जाए। लक्ष्मीचंद जैन, दिल्ली, 20 नवंबर 1973।